Enjoy this recording taken from an unscripted live audio conversation on Mensa. That's M-E-N-T-Z-A.
जी वेलकम ऑल सभी लिसनर्स को नमस्ते सर कैसे हैं
वसीम साहब नदारद लगते हैं तो आज आप सम्मान सम्मान नहीं
है नहीं वसीम जी एक्चुअली आज उनकी मेट्रो लेट मिली है वो ऑन द वे हैं कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं तो इसलिए मैं कहानी की शुरुआत कर देती हूँ जबकि इस बार हमारे लेखक वसीम जी ही हैं और जैसे कि सबको पता है इस बार का टॉपिक था मामा ठंडियां छामा तो हमें माँ पर कहानियां लिखकर भेजनी थी तो हमारे पास जो कहानियां आई वो अधिकतर कहानियां नहीं कविताएं आई थी तो जो कि हमारे इस कहानी के उसमें फिट नहीं बैठती हैं क्योंकि हम कहानी बुनवाते हैं इसलिए मैंने वसीम जी को फिर कहा कि वसीम जी आप एक कहानी लिखिए तो उन्होंने फटाफट से कहानी लिखी और आज की कहानी का टॉपिक है मामा ठंडियां छावा तो मैं अब शुरू करती हूँ वसीम जी की लिखी हुई कहानी माँ माँ कोमल का जब 12वीं का रिजल्ट आया था तो उसके 95% नंबर आए पूरा घर खुशी से झूम उठा बच्चों की कामयाबी पर घर वालों की खुशियों का आलम एक अलग ही मकाम रखता है लेकिन कोमल की माँ के चेहरे पर उदासी पसरने लगी थी ऐसा नहीं था कि उसकी माँ खुश नहीं थी लेकिन उसे जिस बात का दुख सता रहा था वह सिर्फ वही समझ सकती थी माँ जो थी शाम का वक्त था रात के खाने की तैयारी होने लगी रिजल्ट आए काफी दिन बीत गए थे और अब कॉलेजों में दाखिले भी शुरू हो गए थे कोमल को भी दिल्ली जाना था कॉलेज की पढ़ाई के लिए इसलिए रिजल्ट की खुशियां अब बासी हो चुकी थी लेकिन उदासियां कहां बासी होती हैं भला वो तो वक्त के साथ और भी गाढ़ी होती जाती हैं और माएं उदासी पाल ले तो वो शायद ही कभी कम होने पाए कोमल के पापा रंजीत जब किचन में फ्रिज से पानी की बोतल लेने आए तो देखा कोमल की माँ की आंखों में उदासी और वह उदासी भरकर प्याज काट रही थी आंखों में आंसू प्याज काटने से आ रहे थे या उदासी की वजह कुछ और थी ये कौन जान सकता है भला अक्सर माओं को जब रोना होता है ना तो वो ये भी चाहती हैं कि कोई उनको रोते हुए ना देखे और सबसे अच्छा बहाना है प्याज काटना तो वो प्याज काटने लगती हैं शन्नो तुम कुछ उदास लग रही हो और आंखें भी भरी हुई हैं क्या बात है कोमल के पापा ने पूछा कोमल की माँ का नाम तो शालिनी था लेकिन उसके पापा उसे प्यार से शन्नो कहकर बुलाते थे कुछ नहीं प्याज काटने के आंसू हैं माँ ने बिना सिर उठाए ही जवाब दिया और प्याज काटने में मशरूफ हो गई शन्नो ये उदासी ठीक नहीं है कभी ना कभी तो कोमल को बाहर जाना ही होगा ना और मैंने तो तुम्हें बहुत पहले बता दिया था कि कोमल को दिल्ली जाना होगा कॉलेज की पढ़ाई के लिए रंजीत ने कहा हाँ बताया तो था आपने लेकिन तब की बात और है मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मेरे बच्चे मुझसे दूर जाएं माँ ने कहा इतना सुनकर रंजीत खामोश हो गए वो जानते थे कि शालिनी का बिना कोमल के रहना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसमें ही उसकी जान बसती थी जब कोमल 12वीं कर रही थी तभी से उसका सपना था कि वो दिल्ली जाकर पढ़ाई करे उसके इस सपने को साकार करने के लिए ही रंजीत ने सारी तैयारियां की थी और तब अपनी पत्नी शालिनी को बताया भी था लेकिन तब उसके जहन में ये बात थी कि अभी तो 12वीं हुई भी नहीं है तो क्या सोचना लेकिन जब रिजल्ट आने का इंतजार होने लगा तो ये बातचीत और भी तेज हो गई कि अब कोमल को बाहर जाना होगा पढ़ने के लिए। और तभी से कोमल की माँ की उदासी और बढ़ने लगी। ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरा था कि जब वो बिना अपनी बेटी के रही हो। जहां जाती थी साथ लेकर जाती, और ना ही कभी अकेले उसने जाने दिया कहीं। कोमल तो आज तक अपनी माँ से एक समय का खाना उनके हाथों से खाती है। ये सोचकर उनका दिल बैठा जा रहा था, कैसे रहेगी, क्या करेगी, कौन हिफाजत करेगा, मेरा बच्चा खाएगा भी ठीक से नहीं, उसकी तो आदत है, जो चीजें उसको नहीं पसंद वो आज भी मैं खिलाती हूँ, यही सब सोच रहे थे। अपने बच्चों को लेकर माओ का प्यार दुनिया के हर प्यार से अलग होता है। उस प्यार में डर और हिफाजत भी छुपी होती है। यही वह सिरा था जिसे पकड़े हुए कोमल की माँ उदासी के लम्हों से दोचार हो रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद रंजीत थोड़े पास आए और शालिनी के आंसू पोंछते हुए कहा, वो दूर कहाँ जा रही है चन्नो, आजकल के जमाने में दूरियां कितनी कम हो गई हैं, ये तो पता है ना, रोज मोबाइल से वीडियो कॉल करके बात करेंगे, ठीक है, तो हो जाया करेगी ना नजदीकी। आपको तो सिर्फ दूरी नजदीकी ही दिखती है, वो हमारी बेटी है, इतनी दूर जा रही है, वहां उसका ख्याल कौन रखेगा, कैसे रहेगी वो हमारे बिना, शन्नो ने आंसू पोंछते हुए कहा। उसके फ्यूचर का सवाल है शन्नो, इसलिए इतना त्याग तो हमें करना ही होगा, रंजीत ने भी बेटी से बिछड़ने का दर्द महसूस करते हुए कहा। यहां भी तो कॉलेज है, यहां नहीं पढ़ सकती क्या? पढ़ सकती है, लेकिन दिल्ली की पढ़ाई की ज्यादा वैल्यू है ना, इसलिए उसे अब खुशी से विदा करो, रंजीत ने कहा। मेरा दिल नहीं कहता कि वो दिल्ली जाए, दिल्ली की हालत मैं जानती हूं, मैं नहीं छोड़ सकती उसको अकेला। मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम्हारी समस्या क्या है, रंजीत ने झल्लाते हुए कहा। आप नहीं समझ पाएंगे, आप समझ भी नहीं पाएंगे, आप कभी नहीं समझ सकते मेरे दिल की बात। आखिर क्यों नहीं समझ पाऊंगा बताओ तो शन्नो, रंजीत अब सचमुच उछल्ला पड़े थे। क्योंकि आप बाप हैं, मां नहीं, शालिनी ने कहा, और किचन में एक सन्नाटा पसर गया। रंजीत खामोश हो गए। उन्हें इस बात का एहसास तो था कि मां की ठंडी छांव तले ही बच्चे की अच्छी परवरिश होती है, लेकिन वो मजबूर थे क्योंकि कोमल का सपना भी पूरा करना था, कुछ नहीं कर सकते थे। उधर शन्नो अपनी आंखें पोंछ रही थी और रंजीत दिल ही दिल में रो भी रहे थे और बेटी का सपना पूरा करने के ख्वाब भी देख रहे थे। शुक्रिया। वेलकम वसीम जी।
बहुत शुक्रिया दीपिका जी, आज तो आपने बिल्कुल मेरी कहानी में दुगना जान डाल दी।
थैंक यू।
खूबसूरत पढ़ा आपने, आप सबको नमस्कार। मैं नेटवर्क नहीं था इसलिए मैं नहीं समय से जुड़ पाया। बहरहाल अच्छा किया आपने पहले कहानी पढ़ दी। तो दरअसल ये ऐसा टॉपिक है ना कि मैं क्या ही बताऊं। और मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि मैं जब छोटा था और मेरा भाई मुझसे भी छोटा था, तो वो जब पेशाब कर देता था रात में और लाइट वाइट नहीं होती थी गांव में, तो माँ मेरी उसकी जगह पर सो जाती थी और उसे सूखे हुए जगह पर सुला देती थी। मैं उठकर देखता था, मैं कहता था आप जाके वहां सो जाइए, तो कहती नहीं चलो सुबह देखेंगे। मतलब इस तरह की शिद्दत भरी मोहब्बत होती है एक माँ के अंदर जो बच्चे को। और कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि माँ अक्सर बीमार होती थी या बुखार में होती थी, तब भी उन्हें लगता था कि नहीं हमें अपने बच्चे को सूखे में सुलाना है। और वो ऐसा शौक नहीं था, मगर ऐसी कंडीशन थी कि ऐसी स्थिति बन जाती थी कि बच्चे मतलब छोटा भाई थोड़ा ज्यादा करता था बाथरूम, तो इस वजह से बच्चे करते ही हैं। तो कहते हैं ना कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है भी है कि जिस घर में तालीम याफ्ता माँ होती है वह घर तहजीब की यूनिवर्सिटी बन जाता है, मैंने कहा भी था पिछले एपिसोड में, तो ये बहुत खूबसूरत बात है। दरअसल ये बात इसलिए भी सही है क्योंकि माँ के हाथों परवरिश का जो आयाम है ना दीपिका जी, वह दुनिया में हर आयाम से आला और पाकीजा है। यूं ही नहीं इस्लाम में ये कहा भी तो गया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, और शायद इसीलिए मुनव्वर राना ने कहा होगा कि चलती फिरती हुई आंखों से अजां देखी है, चलती फिरती हुई आंखों से अजां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी माँ देखी है।
माँ देखी है, बहुत खूबसूरत। तो वसीम जी इसीलिए वो मामा ठंडिया छामा जो मैं आप पिछली बार हमने टॉपिक दिया था तो उसमें यही है, मामा ठंडिया छावा आखण तत्ती हवा न लगे मैं लाल तो सदके जावा, मतलब उसको गर्म हवा न लगे उसको लू न लगे तो मैं ऐसे छुपा कर रखूं उसको और मैं उसके सदके जाऊं। जो आपने बताया ये बिल्कुल उसी से मेल खाता हुआ ये लाइनें हैं।
बिल्कुल,
तो ये बात सच है जो आप कह रहे हैं कि माँ कभी नहीं चाहती कि उनके बच्चों को कोई तकलीफ हो।
बिल्कुल, और मेरे ख्याल में दीपिका जी माँ को किसी परिभाषा में भी नहीं बांधा जा सकता, माँ हर एक परिभाषा से परे होती है, उसको उसकी खूबसूरती बयान की जा सकती है, उसकी अच्छाइयां बयान की जा सकती है, लेकिन परिभाषा से एकदम परे है वो। अब चूंकि इस शो का टॉपिक है माँ, तो इसलिए हम तो कुछ कह ही सकते हैं ना, खूबसूरती तो बयान कर ही सकते हैं या फिर हम जो माँ के बारे में महसूस करते हैं उसे तो बयान कर ही सकते हैं। और हम सजीव सर से भी जानेंगे माँ अपने कि माँ अपने बच्चों के लिए किसी अजीम शख्सियत तो होती ही है, उनके लिए किसी मुहाफिज से जरा भी कम नहीं होती, तो क्यों नहीं होती इसके बारे में सजीव सर से हम थोड़ा सा जानेंगे।
हाँ बिल्कुल वसीम, मुझे लगता है कि माँ तो जो है सबसे पहला इंस्टीट्यूशन होता है किसी बच्चे के लाइफ में।
जी,
सबसे पहले जो भी वो सीखता है वो अपनी माँ से सीखता है। और मैंने तो एक और सर्कल था उसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मैं तो आज भी उनसे सीखता हूँ। और मतलब ये सरिता जी ने भी एक अपने शो में बात करी थी कि हमें कभी ये नहीं कहनी चाहिए कि हम माँ बाप हमारे साथ रहते हैं, हम हमेशा उन्हीं के साथ रहते हैं, क्योंकि
हाँ बिल्कुल हम उनके साथ रहते हैं।
परवरिश दी है अपने और मैं मतलब इनफैक्ट मैं दोबारा यहाँ शेयर करता हूँ क्योंकि मैं शायद मेरी मम्मी भी है यहाँ पे, तो मैं
मम्मी को नमस्ते
नमस्कार।
तो मैं एक्चुअली ये मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं कॉलेज जाया करता था तो मैं यंग लड़का था, करीब 17-18 साल का लड़का था, और मैं कॉलेज से आने के बाद इतना थक जाता था कि सो जाता था। तब मैं देखता था कि मेरी मम्मी जो है वो सिलाई का काम करती थी, तो वो उस टाइम भी काम कर रही होती है, तो मैं सोचता था कि यार मेरी मम्मी जो है सुबह 5 बजे उठती है और आज देख मतलब इस टाइम भी काम कर रही है, ना दोपहर को सोती है और रात को भी सबसे सबको सुलाने के बाद सो रही है। तो मैं हैरान होता था कि मतलब मैं 17-18 साल से मेरे पास ये एनर्जी क्यों नहीं है। तो मैं धीरे धीरे फिर मैंने उनसे टाइम मैनेजमेंट सीखा, इनफैक्ट मतलब मैंने सीखा कि वो किस तरह से अपने सारे कामों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, टाइम निकालती है हर काम के लिए, है ना, और वो कोई चीज छोड़ती भी नहीं है, मतलब वो घर के काम के साथ साथ अड़ोस पड़ोस में सबसे महिलाओं से मिलना जुलना ये सब चीजें मतलब कोई कमी नहीं छोड़ती थी पूरे दिन में ना। तो मुझे वही लगता था कि ये सब चीजें अगर ये कर सकती है मेरी मम्मी तो मैं भी कर सकता हूँ, तो वो मैंने उनसे सीखा है और इनफैक्ट आज भी उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। तो यही चीजें हैं मुझे लगता है कि हर बच्चा सीखता है अपनी माँ से। तो माँ तो ऑफकोर्स मतलब एक आप देखिए, अगर आप ये तो सिर्फ इंसानों की हम बात कर रहे हैं, आप जानवरों में भी देखिए जिनमें हम मानते हैं कि इतनी अटैचमेंट नहीं होती है, पर आप देखिए कोई भी जानवर जो है वो अगर उनके बच्चों को जाकर छेड़ दो तो वो इतनी एग्रेसिव हो जाएगी आपके ऊपर कि वो मतलब कुछ भी कर जाएगी उसके लिए। दिस इज ट्रू नेचर, आई मीन इसमें कोई दो राय है नहीं।
बिल्कुल सही कहा सर आपने। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले फेसबुक पर एक वीडियो देखा था जिसमें एक मुर्गी अपने बच्चों को चरा रही है और तभी वहां एक छोटा सा कुत्ता आया। कुत्ता चाहता था कि वो बच्चों में से किसी को उठा ले जाए खाने के लिए, मगर वो मुर्गी इतनी ताकतवर खुद को बना लिया उसने कि उस कुत्ते से लड़ पड़ी और भगा ही डाला उसको। तो सच है ये बात आपकी भी सच है। और कहते हैं ना कि माँ की घुड़कियां और उसकी डांट तो हम सबने सुनी ही होगी बचपन में, लेकिन माएं अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती सर, किसी भी सूरत में अपने बच्चे के लिए वह कभी भी बाई से नफरत भी नहीं हो सकती, यह नामुमकिन है, क्योंकि मोहब्बत की अलामत अगर कोई है इस पूरी दुनिया में तो वो सिर्फ माँ ही है। माँ कभी भी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, हाँ थोड़ा बहुत गुस्सा जरूर हो जाता है, शायद इसीलिए मुनव्वर राना ने लिखा है कि लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं आती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं आती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती।
बिल्कुल वसीम जी, और सच बात तो ये है कि अगर नाराज भी होती हैं या डांटती मारती भी है ना, तो उनको बच्चे को भले उस बात का इतना एहसास ना हुआ हो, माँ को ज्यादा दुख होता है इस बात का और वो खुद रोने लगती है कि मैंने क्यों डांटा इसको। तो ये एहसास हमेशा रहता है चाहे वो कितना भी नाराज हो।
मनोज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक चीज पूछना चाहूंगा। खैर उन्होंने कहानी सुनी कि जिस तरीके से हमने एक डायलॉग सुना है दीवार फिल्म का, सबको सबने सुनी होगी, मेरे पास माँ है, कि यानी दुनिया की हर दौलत एक आदमी के पास हो लेकिन कुछ भी नहीं हो उसके पास अगर माँ नहीं है, तो उस फिल्म का या उस पर्टिकुलर डायलॉग का सेंस यही है। तो मनोज सर कुछ कहना चाहें इस बारे में।
सभी को नमस्कार, और मैं सही बताऊं वसीम भाई,
नमस्कार,
बहुत ही अच्छी बहुत ही खूबसूरत कहानी है और बहुत इमोशनल। और मैं
शुक्रिया
कह रहा था कि जब दीपिका इसको पढ़ रही थी, वो तो आपने शुक्र है कि आप बीच में आए और आपने बचा लिया। दीपिका का गला रुंध गया था और वो रो पड़ी थी और वो आवाज यहाँ तक आ गई थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे कहानी पढ़ते हुए।
मेरी नवाजिश है उनको, मेरी नवाजिश है वो, बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। मैं मशहूर हूँ कि वो इतनी शिद्दत से इतनी गहराई में डूब कर कहानी पढ़ती हैं कि शायद मैंने कभी किसी को इस तरह से, किसी स्टोरी टेलर को इस तरीके से नहीं सुना है। तो हैट्स ऑफ टू दीपिका जी।
और बताए इतनी अच्छी स्टोरी थी क्योंकि वो खुद माँ भी है और वो माँ है, और वो जब वो स्टोरी पढ़ रही थी जब, तो उसके बाद उनका गला रुंध गया था और आंसू भी छलक आए थे इनकी आवाज में, समझ में आ रहा था। दीपिका बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने।
थैंक यू मनोज जी, आपने बहुत सही पकड़ा। एक्चुअली मैं रिलेट कर पा रही थी इस चीज को कि बच्चे जब 12th करके।
जी जी जी,
हेलो,
हाँ हाँ कहें कहें दीपिका। हाँ, ये अभी भी इमोशनल हुई है,
बड़ा मुश्किल है।
हाँ नहीं नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा चलो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ जो वसीम ने पूछा।
हाँ क्वेश्चन पे
हाँ दीपिका, आप प्लीज काम डाउन, आई कैन अंडरस्टैंड। तो जैसे वसीम साहब आपने मेरे से पूछा, मैं आपको सच बात बताऊं, मुझे आप सुन ही ना पा रहे होते, मुझे आप जान ही ना पा रहे होते अगर मैं अपनी माँ को ना समझ पा रहा होता या माँ से मैंने ना सीखा होता। मेरी माँ कम है, मेरी माँ मेरी गुरु ज्यादा है।
बिल्कुल सजीव सर ने यही बात कही ना कि वो हमारी टीचर है।
वो मैंने इतनी मार खाई है ना उनसे हर एक बात पे, चाहे कैसे बोलना है, स्पीच कैसे देनी है। जैसे वो ये कह रहे थे, सरिता साहिबा का एक प्रोग्राम था जहां पर मैंने वाली बात शेयर भी की थी कि मैं आज जो भी हूं ना वसीम साहब, अगर मैं कहीं स्टैंड करता हूं जहां पे मेरा नाम है, अगर गूगल पे लिखते हैं तो कहीं ना कहीं मैं दिख जाता हूं, तो ये सिर्फ मेरी माँ की बदौलत है। अगर वो नहीं होती मेरी जिंदगी में तो शायद मैं आज ये ना होता। उन्होंने गाइड भी किया। अच्छा कई जगहों पर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तुम मुझसे बार बार क्वेश्चन करोगे क्या। मुझे याद है मैं 11वीं में, मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया था, तो 11वीं में जब मैं वहां पहुंचा बोर्डिंग स्कूल में, मैंने फिर मदर को, क्योंकि लैंडलाइन हुआ करते थे, मैं फोन करता था, अच्छा मम्मा आज ये हुआ, मम्मा ये हुआ, कुछ दिन तो सुनती रही वो। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम मुझे रोज फोन करके क्यों बताते हो कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ जिंदगी में। तो मैंने कहा मैं किसको बताऊं, कह रहे नहीं अपने डिसीजन खुद लो, मुझसे क्यों पूछते हो। अगर तुम अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते तो तुम क्या करोगे जिंदगी में। वो दिन और वसीम भाई आज का दिन, वो मेरी माँ की सीख, उनकी सिखाई हुई चीजों पे मैंने वो चीजें करनी शुरू करी और आज शायद मैं वहां खड़ा हूँ जो मेरी माँ को गर्व होता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ इस समय। वो अगर वो नहीं होती ना, वो नहीं होती, वो गुरु थी, टीचर थी, हर पग पे हर पल पे उसने मेरे को समझाया। और मोहब्बत तो जैसे कहा कि अनकंडीशनल लव है माँ का बच्चों के लिए, वो तो आज भी लड़ जाती है किसी से भी अगर मेरे बारे में बात होती है। तो शी इज दैट पर्सन जो हमेशा आपको स्ट्रेंथ देती है।
मनोज जी आप ये कह रहे हो किसी से भी लड़ जाती है, पता हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है मम्मी पापा की बच्चों की वजह से, सबसे बड़ी बात तो ये है, दूर क्यों जाना है।
हाँ वो तो वो ढाल बनकर खड़ी हो जाती है ना। जैसे मनोहर राणा ने एक और शेर कहा, उन्होंने तो पूरा एक दीवान लिख डाला है, एक पूरी किताब है माँ पर मनोहर राणा की। वो लिखते हैं कि घेर लेने को जब भी बलाएं आ गईं, घेर लेने को जब भी बलाएं आ गईं, ढाल बनकर माँ की दुआएं आ गईं। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारी माएं हैं, और जिनकी नहीं है मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कह सकता कि मतलब अफसोस ही कर सकते हैं, लेकिन अब वो कुदरत का निजाम है, उस पे कुछ कहा भी नहीं जा सकता। बहरहाल हम अब
सजीव जी कुछ कह रहे थे। वसीम जी,
मैं कह रहा था कि सरिता, अच्छा जी, भी विचार
जानते। हाँ जी, सरिता जी भी हमारे साथ हैं।
हाँ सरिता जी हैं, प्लीज मैम बताएं।
नमस्कार आप सबको।
नमस्कार मैम।
नमस्ते सर।
आप सबकी मैं बातें सुन रही थी, और जितना दीपिका जी इमोशनल हो रही थी ना, मैं इतनी बह गई थी, आपको मैं क्या बताऊं कि हम देखिए हम माँ है ना, तो मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमारी जिंदगी में ना सबसे पहली टीचर ही माँ होती है, यू नो, सबसे पहली दोस्त भी माँ ही होती है, और जिंदगी भी माँ ही होती है, क्योंकि जिंदगी देने वाली भी माँ होती है।
बिल्कुल।
तो हम माँ पे, तो किसी ने मुझे बताया था कि वो किसी ने लिखा कि माँ पे निबंध लिखो, तो वो बेचारा उसने पेजेस को ना भरना शुरू कर दिया, और आखिर में खाली पेजेस छोड़ दिए, और लिख दिया कि मेरे पास इतना कुछ लिखने हो कि समय कम पड़ जाएगा, मैं माँ की तारीफ में क्या लिखूं, क्या निबंध आपके लिए लिखूं मैं। सो माँ पे तो यार कोई भी है ना इतना इमोशनल हो जाता है, वो सारी बातें याद आ जाती है। हम अक्सर यही तो कहते, हमारी माँ कहती थी, मेरी माँ ये कहती थी, यू नो। सो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आप सबके साथ, और आपकी कहानियां इतनी अच्छी हैं वसीम जी, कभी मैं भी जरूर पढ़ना चाहूंगी आप
जी। थैंक यू, मैं मेरी किताब है, आप पढ़ सकती हैं।
जरूर जरूर जरूर।
हाँ, बहरहाल अगले टॉपिक पे दीपिका जी, मैं चाहूंगा कि आप अगला टॉपिक बताएं, थोड़ा सा बाहर आए।
अगला टॉपिक अब मुझे तो लगता है शायद बच्चों का ज्यादा फेवरेट होगा, और हो सकता है बड़ों का भी हो, क्योंकि बच्चे बड़ों के बिना तो वो काम कर ही नहीं सकते, जो कि होने वाली है गर्मियों की छुट्टियां। तो अब गर्मियों की छुट्टियों के क्या क्या प्लान्स हैं, क्या सोचा है, या क्या किया जाता है, क्या क्या सब करते हैं, या क्या करना चाहते हैं, इस पे सब कोई अपनी कहानी लिख सकते हैं।
तो हमारा अगला टॉपिक होगा
समर वेकेशन।
जी, 20 से शुरू भी हो रहा है, 20 मई से समर वेकेशन शुरू भी हो रहा है।
जी जी बिल्कुल, बस हमारी अगली कहानी का जब एपिसोड आएगा, अगला एपिसोड, तो वो उस दिन से गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं बहुत सारे स्कूल्स में।
जी, तो दोस्तों मैं अपने सारे लिसनर को आह्वान करता हूं कि वो गर्मी की छुट्टियां, ये हमारा टॉपिक है। नानी दादी के घर जैसे हम मिलने जाते थे पहले के जमाने में, आज भी जाते होंगे, शहर में रह रहे बच्चों के लिए तो गांव एक अजूबे की तरह है, तो उनको भी जाना चाहिए, या हम जो काफी सीनियर लोग हैं, तो वो लोग, उनके पास अपनी एक यादें होंगी कि जब वो अपने बच्चों को लेकर गांव जाते हैं तो कैसा फील करते हैं, गांव शहर का कंट्राडिक्शन कुछ भी आप लिख सकते हैं, फील करके लिख सकते हैं। और इस प्रोग्राम में जहां हम सुनते हैं, सुनाते हैं बेहतरीन कहानियां, और बात करते हैं कहानियों की बुनाई के बारे में, और मंडे तक हमें कहानियां मिल जानी चाहिए, और हमारा मेल आईडी है kahanibuno@gmail.com kahanibuno@gmail.com। तो दीपिका जी, आप मैसेज में भी आपने डाल दी है शायद मेल आईडी, तो समय अब
हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा, जी बिल्कुल, कहानियां आए हमारे पास, क्योंकि हमारा इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि कोई भी कहानीकार बन सकता है। तो आप ये मत सोचिए कि हमने क्या लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, हमारे शब्द कैसे होंगे, भाव अच्छा होना चाहिए। सब जितने भी लिसनर्स हैं या जो भी हमारे रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे उसके बाद, कोई भी कहानी लिखकर हमें भेज सकता है। तो गर्मियों की छुट्टियों की बहुत सी यादें, बहुत सी प्लानिंग, बहुत चीजें होती हैं हमारे दिमाग में, तो आप कुछ उन सब पे कोई कहानियां लिख करके हमें मंडे तक भेजिए, और जरूर कहानियों को शामिल करेंगे, जो कहानी सिलेक्ट होंगी, कहानीकार से होंगी बातें भी, और कहानी के बारे में जानेंगे उनसे, तो हम इंतजार करेंगे आप सबकी कहानियों का।
साथ ही में अपने मशवरे भी दें इस शो के बारे में कि ये शो कैसा है, और अपने 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 मुताबिक टॉपिक भी आप दे सकते हैं कि ये इस ये टॉपिक अच्छा हो सकता है आगे आने वाले दिनों में, ताकि हम अपने अपने विषय को और भी विस्तार दे सकें और इस शो को और विस्तार दे सकें, बड़ा कर सकें। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम समाप्ति की ओर है और 20 सेकंड बचे हुए हैं सबको।
जी, सभी लिसनर्स और सभी स्पीकर्स का बहुत बहुत थैंक यू जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद हमें इतना प्यार और हमारे प्रोग्राम को प्यार देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगले बहुत प्रोग्राम बहुत में मिलेंगे। जी बिल्कुल,
18 मई को।
तो जी, थैंक यू सो मच।
इफ यू एंजॉयड दिस, download the Mensa app and start your own live audio conversation.